ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का दसम अध्याय का भक्ति शिरोमणि प्रह्लाद शीर्षक श्लोक संख्या 11 पाठ करेंगे। श्री भगवान उवाच नैकान्तिनो मे मयि जात्पिहाशिषम् आशासते मूत्र चये भवद्विधाम् तथापि मन्वन्तरमे ददत्र दैत्येश्वराणामनुभुङ्क्ष्व भोगान्। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा नाम नहीं एकांतिनः अनन्य भक्ति के अतिरिक्त और किसी इच्छा से विहीन मैं मुझसे मई मुझ में जातु किसी समय इह इस भौतिक संसार में आशीष वरदान आशासते आंतरिक इच्छा अमूत्र अगले जीवन में च तथा ये जो भक्त भवद्विधाः आपकी तरह तथापि फिर भी मन्वंतरम एक मनु के आयु तक एतत् यह अत्र इस भौतिक संसार में दैत्येश्वराणाम भौतिकवादी मनुष्यों के ऐश्वर्यों का अनुभुंक्ष भोग कर सकते हो भोगान सभी भौतिक ऐश्वर्यों का। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा हे प्रिय प्रह्लाद तुम जैसा भक्त न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस मन्वंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्य का भोग करो। आप लोग दोहराएंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा हे प्रिय प्रह्लाद तुम जैसा भक्त न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस मन्वंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्य का भोग करो। तात्पर्य, प्रत्येक मनु की आयु 71 युग चक्र की अवधि के तुल्य परिगणित की जाती है, जिसमें प्रत्येक युग 43 लाख वर्ष के समान होता है। यद्यपि नास्तिक लोग भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं और बड़े जोर शोर से बड़े बड़े आवास, सड़कें, शहर तथा कारखाने बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे 80-90 वर्ष या बहुत हुआ तो 100 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं। यद्यपि भौतिकवादी व्यक्ति व्यामोह का साम्राज्य बनाने में इतना श्रम करता है लेकिन वह कुछ वर्षों से अधिक तक उसका भोग नहीं कर पाता। तथापि चूंकि प्रह्लाद महाराज भक्त थे, अतएव भगवान ने उन्हें भौतिकवादियों के राजा के रूप में ऐश्वर्य भोग करने की अनुमति प्रदान कर दी। प्रह्लाद महाराज ने हिरण्यकश्यप के परिवार में जन्म लिया था, जो सर्वोच्च भौतिकवादी था, और चूंकि प्रह्लाद अपने पिता के प्रामाणिक उत्तराधिकारी थे, अतएव भगवान ने उन्हें अपने पिता द्वारा बनाए गए साम्राज्य पर इतने वर्षों तक भोग करने की अनुमति प्रदान की, जिसकी गणना किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति के लिए कर पाना असंभव है। भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करनी होती, किंतु यदि वह शुद्ध भक्त होता है तो बिना किसी प्रयास के उसे भौतिक सुख भोग करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। अतएव हर एक को सलाह दी जाती है कि वह सभी परिस्थितियों में भक्ति करें। यदि कोई भौतिक ऐश्वर्य चाहता है तो शुद्ध भक्त भी बन सकता है। और इस तरह उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम में भागवतम द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय 10 श्लोक में कहा गया है, अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे कोई कुछ चाहे या नहीं चाहे, अथवा वह भगवान में तदाकार होना चाहे, वह तभी बुद्धिमान है। यदि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा द्वारा पूजा करता है। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। तो आज बहुत बड़ा शुभ दिन है। आज भगवान श्री राधा दामोदर जी के प्राकट्य दिवस है और एक महान संत आचार्यों का भी जन्मदिन है। देखो कैसे संगम है। तो इसलिए आज रामानुजाचार्य जी के जन्मदिन भी है और जीव गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी का जो प्राण है श्री राधा दामोदर भगवान जी के प्राकट्य दिवस। तो थोड़ा सभी में आदेश है कि सबसे थोड़ा थोड़ा बोलना है। तो श्रीमद् भागवतम का जो हमारा प्रसंग चल रहा है, जब हिरण्यकशिपु का वध उपरांत प्रह्लाद जी ने भगवान नृसिंहदेव को प्रार्थना की और उनको गोद में लेकर भगवान नृसिंहदेव ने उनसे वर मांगने के लिए याचना की, लेकिन प्रह्लाद ने ठुकरा दी, क्योंकि यही शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। जैसे पूज्य महाराज जी वैष्णव महाराज कल बोल रहे थे कि जो भगवान का सेवा तो करता है, बदल में कुछ चाहता है, वो तो व्यवसायी है, व्यापार करने वाला है। तो ऐसे ही प्रह्लाद नहीं थे, पर नृसिंहदेव हट करके बोले कि तुम मांगो, कुछ तो मांगो। तो उन्होंने बोले कि प्रभु, आप जानते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप शुद्ध भक्त का परीक्षा लेना चाहते हैं तो ठीक है, आप अगर कुछ कहते हैं तो मुझे यही, और तो बहुत सारी चीज़ हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे यही वर दीजिए कि मेरे हृदय में जो इच्छा का जो अंकुर जागृत ना हो, ऐसे ही वर दीजिए। अच्छा, अर्थात तो मेरी सारी कामनाएं नष्ट हो जाएं, मेरे हृदय में कभी भी कोई इच्छा प्रकट ना हो, ऐसे ही मुझे वरदान दीजिए। तो भगवान फंस गए। यही तो चाहते थे भगवान, यही संसार में प्रमाणित करना चाहते हैं कि शुद्ध भक्त किस प्रकार होता है। कुछ नहीं चाहता है, केवल भगवान के सेवा के अतिरिक्त, क्योंकि जो सेवानंद है उससे जो आनंद प्राप्त होता है, संसार में कोई भी आनंद उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रह्लाद जी ने तो जब मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान प्रह्लाद जी के ऊपर प्रसन्न है और उन्होंने सामने उनसे पूछ रहे हैं ये प्रमाणित करने के लिए। संसार में देखो, जो भगवान का आराधना करता है, अगर उसका मन में कोई भी कामना हो वो जरूरी पूर्ण हो जाता है। तो आगे कहेंगे प्रभुपाद, तात्पर्य में कहा है कि अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। इसका अर्थ नहीं है जिसका मन में कुछ कामना हो और कामना से रहित हो, मोक्ष कामना हो, सभी प्रकार परिस्थितियों में वो अगर भगवान का पूजन करे, भगवान का आराधना करे, भगवान का भक्ति करे, तो सारे इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। अर्थात भगवान उनका जो इच्छा को वो फलप्रद करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ ये है कि जब हम भगवान किसी भी कामना से हम प्रेरित होकर अगर भगवान का हम प्रेममय दिव्य सेवा में निष्काम भाव से हम करते हैं, तो उस निष्काम भाव से किया हुआ सेवा का जो फल, जो अंतरात्मा, जो हमारे जो वास्तव आनंद है वो जागृत होता है और उस आनंद से इतना वो देव दिव्य आनंद को प्राप्त हो जाता है और उससे बाह्य और कोई आनंद का आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अगर भक्त तो भगवान का इस प्रेममय सेवा में निरंतर लग जाता है, तो फिर उनका उस दिव्य आनंद का एक बूंद भी ये बाह्य सुख नहीं है, तो इसलिए वो कुछ नहीं चाहता है। और प्रहलाद ये तो थे ही अन्यतम महाजनों में से एक है, और संसार में शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए उनका आगमन हुआ। और नारद जैसे वो भी महाजन, एक महाजन दूसरे महाजन का गुरु है, एक महाजन दूसरे महाजन का शिष्य भी है। तो इस प्रसंग में, इस संदर्भ में क्या कहा जाए, तो उनका जो चरित्र होंगे तो किस प्रकार हो सकता है। तो हम सुने हैं जब गदाधर पंडित आईतोटा में जब भागवत पाठ करते थे और महाप्रभु श्रवण करते थे, महाप्रभु बारंबार बारंबार कहते थे कि तुम ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र मुझे सुनाओ सुनाओ। ये है प्रेरणा का स्रोत, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरणा है भक्तों का चरित्र। और इस प्रकार निष्काम शुद्ध भक्तों का प्रसंग हम श्रवण करेंगे तो अवश्य ही हमारे जो हृदय में, जो मन में जितने भी कामनाएं हैं ये सब भस्मीभूत हो जाएंगे। तो इसलिए प्रहलाद को जब उन्होंने बरबस किया कि मांगो मांगो, तो प्रहलाद जी ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपका मेरे सामने आप है तो फिर आपको अतिरिक्त और संसार में किसी वस्तु का मुझे क्या चाहिए, बस मुझे सब प्राप्त हो गया और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे ही कुछ देता हूं तो आप कम से कम मेरा ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है तुम मेरे से कुछ बर मांग लो, और उसके वरदान इस प्रकार है तो जब ये मन्वंतर चलेगा तब तक तुम इस राज्य को भोग करो, क्योंकि तुम्हारा पिता हिरण्यकशिप का माने त्रिभुवन विजयी हिरण्यकशिप का साम्राज्य बहुत बड़ा है। तो प्रहलाद ने पहले कह चुके हैं मैं तो असुरकुल में पैदा हुआ हूँ और मेरा पिता त्रिभुवन विजयी है, उस साम्राज्य और उस धन दौलत में उस प्रकार भोग विलास में मैं बढ़ा पढ़ा हूँ और मुझे क्या चाहिए। तो भगवान बोले नहीं, तो संसार को शिक्षा देने के लिए हाँ भक्त अगर कुछ मांगता है तो भगवान वास्तव में देते हैं, तो उसको प्रमाणित करने के लिए ये। तो ये नहीं कि प्रहलाद भी व्यापार कर लिया, नो नहीं नहीं ऐसे ही नहीं, वो तो जबरदस्ती देते हैं, क्योंकि अगर भक्त संसार का शासन नहीं करेंगे अभक्त करेंगे, तो जैसे राजा व्यण का हुआ था उसी प्रकार संसार में धरती खाद्य उत्पादन करना बंद कर देगी, सब प्रकार अनर्थ का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तो भगवान ने हिरण्यकश्यप सॉरी प्रहलाद महाराज से इस प्रकार कहते हैं कि भले ही तुम इस भौतिक जगत में ही क्यों ना रहो, लेकिन तुम्हें निरंतर मेरे उपदेश तथा वचन को सॉरी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा हे प्रिय प्रहलाद, तुम जैसा भक्त न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में किसी भी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, क्योंकि शुद्ध भक्त का यही लक्षण होता है ना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये उत्तम भक्ति का, उस उत्तम भक्ति का ये याजन कर रहे हैं प्रहलाद जी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम जैसे भक्त निरंकारी और इच्छा शून्य न अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मेरी इच्छा है मेरी प्रसन्नता के लिए तुम मुझसे कुछ वर मांग लो। मैं आदेश देता हूं कि तुम इस मन्वंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में अनेक नहीं उनके ऐश्वर्य का भो प्रभु करो। तो भगवान जब कहा तो भगवान का इच्छा भक्त भी जानता है, भक्तों का इच्छा भी भगवान जानते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं प्रहलाद को अगर संसार का राज्य भोग करने के लिए भगवान प्रेरित करते हैं तो प्रहलाद जी उनका अधोगति हो जाएगी, तो ये बात नहीं है। महाजन है सभी को आदर्श शिक्षक देने के लिए, अगर प्रहलाद महाराज शिक्षा नहीं देते हैं संभवतः हम लोग जो एकत्रित हुए हैं सारा विश्व में ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो मुख्य जो क्या नियम प्रणाली है प्रहलाद महाराज शिक्षा है ये है। तो इसलिए भगवान प्रहलाद जी को इस प्रकार वरदान देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आगे फिर क्या वो देखेंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखते हैं कि प्रत्येक मानव की आयु, उन्होंने कहा कि मन्वंतर की अवधि तक उनका जितने भी समय है उतने समय तक तुमको ये साम्राज्य भोग करना पड़ेगा पड़ेगा। तो उसके लिए कहते हैं कि प्रत्येक मानव की आयु 1000 युग चक्र की अवधि है ना। तो हम जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन में कितने मनु आते हैं, 14 मनु, और प्रत्येक मनु का समय होता है 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग मतलब ये जो हमारे चार युग है सत्य त्रेता द्वापर कली, जैसे कि कली का 432,000 वर्ष है, उसको दो गुना करिए ये द्वापर का, और कली का 3 गुना करिए त्रेता का, कली का 4 गुना करिए तो सत्य का, ये चारों को आप मिला लीजिए टोटल करिए जितने होंगे ये एक चतुर्युग है। इसी प्रकार इसमें 1000 गुना करिए जितना होगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन है, और रात भी उनका उतना ही है। तो ये जो मन्वंतर है तो कितने बड़े विशाल समय है, तो उस समय अवधि तक प्रहलाद जी को भगवान प्रेरित करते हैं कि आप ये राज्य भोग करो नहीं? जो कि एक जैसे कि हमारे गले में कुछ एक ऐसे ही कुछ फंस जाए तो आपको कैसे लगेगा, उसी प्रकार प्रहलाद जी को जब उन्होंने ये साम्राज्य भोग विषय भोग करने के लिए भगवान प्रेरित करते हैं प्रहलाद जी का मन में भी वही है। इसी प्रकार फिर भी भक्त होने के कारण उन्होंने ये सब भौतिक जो बाधाएं हैं तो उनको प्रभावित नहीं कर सकता है क्योंकि उनसे ऊपर हुए, भले ही आपातत बाह्य दृष्टि से तो लगता है कि ये इस संसार का जो सर्वोच्च विषय है उस विषय को उन्होंने भोग कर रहे हैं, फिर भी वो भोग उनके लिए कुछ नहीं, वो भोग नहीं करते हैं, है ना। जैसे ईशावास्य उपनिषद में पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृद्धः कस्य स्विद्धनम्। कहते हैं जो जानता है ये सारे संसार ये भगवानमय है, हर वस्तु स्थावर जंगम देखे ना देखे तार रूप सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर जो भी सचराचर जगत है तो उनका दृष्टि में तो भगवानमय है, ईशावास्यम इदम सर्वम, तो किसको लेकर वो क्या भोग करेंगे, तो उनका दृष्टि तो इसी प्रकार है वासुदेव सर्वमिति बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो इसलिए उनका दृष्टि में ये कोई भौतिक दृश्य नहीं बनता है, तो उनका दृष्टि में केवल भगवानमय है, प्रहलाद जी का भी वही दशा है। तो इसलिए कितने भी ये हो समयावधि मन्वंतर, एक मन्वंतर क्या है तो ब्रह्मा जी का आयु के बराबर उनको भी राज्य भोग करना पड़े, फिर भी वो राज्य से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि जो हमेशा भगवान को दर्शन करते हैं सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति, तो फिर विषय का भोग का कैसे कामना रह जाएगी उनका मन में, नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रहलाद को बहुत प्रलोभन देने के पश्चात, इनकार करने का पश्चात, तो उनको जबरदस्ती बरबस करा कर उनको ऐसे वरदान देते हैं, है ना। तो ये है भगवान का अनन्य भक्त का ये लक्षण है। प्रहलाद ने कह चुके प्रभु आप अगर परीक्षा करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ये भौतिक विषय ये तो विष तुल्य है, विष पान करने से जैसे अंदर में ज्वाला उत्पन्न होती है तो उसी प्रकार मुझे ये विषय वस्तु देखने में ये होता है, इसी प्रकार मेरी भावना है, तो आप कृपा करके उन वरदानों को आप वापस लीजिए, लेकिन भगवान देना चाहते हैं तो फिर आगे क्या होगा देखेंगे, समय कम है। और भी आज भगवान श्री राधा दामोदर जी का प्राकट्य दिवस, आप जानते हैं राधा दामोदर हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के केंद्र जहां से ये सब प्रसारित हुआ है, ब्रॉडकास्ट हुआ है, वो है राधा दामोदर। प्रभुपाद जी ने जब उन्होंने वृंदावन आए राधा दामोदर मंदिर में, उन्होंने 6 साल रुके, यूएसए जाने से पहले तो उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में रुके। वही राधा दामोदर जो कि षड गोस्वामी हमारे सप्त देवालय है, और जो गोस्वामियों का प्रत्येक आराध्य सो भगवान होते हैं, तो उनमें से ये अन्यतम है। तो ये राधा दामोदर भगवान का प्राकट्य ऐसे ही हुआ कि हमारे जो आचार्य रूप गोस्वामी, तो उन्होंने स्वयं उनको प्रकट कराए और स्वयं वो पूजित विग्रह थे, और रूप गोस्वामी का जो अत्यंत प्रिय शिष्य एवं शिष्य जीव गोस्वामी शिष्य भी है और भतीजा भी है, उनके भाई के अपने सगे भाई का वो बेटा है, तो जीव रूप गोस्वामी को अत्यंत प्रिय थे, अत्यंत प्रिय। तो प्रिय होने के कारण तो उन्होंने अपना सेवित विग्रह को जीव गोस्वामी को प्रदान किए, वो भी षड गोस्वामी में अन्यतम है, और उन्होंने अपना गुरु जी के साथ बहुत ग्रंथों का संकलन किए, उनका भक्ति ग्रंथ संकलन में उनका बहुत योगदान है। खुद ही जीव गोस्वामी बहुत सारे ग्रंथ लेके है, महाभारत में तो 1 लाख श्लोक होते हैं, तो जीव गोस्वामी उससे भी अधिक श्लोक रचना की है। तो इसलिए ये राधा दामोदर रूप गोस्वामी का द्वारा प्रदत्त जीव गोस्वामी जी को प्राप्त हुए, और जीव गोस्वामी अपना प्रिय गुरु महाराज के द्वारा प्रदत्त ये राधा दामोदर को प्राप्त होकर इतना हर्षित, इतना आनंदित थे तो वर्णन नहीं किया जा सकता है, और इतने भगवान का साथ उनका संबंध इतना अंतरंग था, तो भगवान उनसे बात करते थे, राधा दामोदर जीव गोस्वामी से बात करते थे। आजकल तो हम जैसे कि हमारे मंदिर में हम क्या करते हैं, हमें समय अनुसार हमारे नियमित सेवा पूजा षोड़श उपचार में कि जो भी पंचोपचार जो भी जैसे ही पूजा होती है, तो ये सब हमें नियमबद्ध समयानुवर्ती होकर हम करते हैं, लेकिन उस समय तो ये सब घड़ी पड़ी नहीं थे, वृंदावन तो वृंदावन ही था। तो जब जीव गोस्वामी जी स्वयं अपना हाथ से नैवेद्य बनाते थे और राधा दामोदर जी को अर्पण करते थे, लेकिन जब कुछ दिन देर हो जाता था तो भगवान स्वयं बोलते थे कि जीवा मुझे बहुत भूख लगे हैं, अब मुझे खाना खिलाओ, ऐसे ही बात करते थे। तो इतने अंतरंग ये थे, क्योंकि गुरु ऐसे ही प्रेम बस शिष्य का योग्यता जानकर उनको अपना सेवित विग्रह को प्रदान किए, और शिष्य भी सर्व गुण संपन्न गुरुनिष्ठ ऐसे ही भक्त गुरु के द्वारा प्रदत्त जो भगवान को वो इतना सेवा की। तो इसलिए वो जीव गोस्वामी का प्राण है राधा दामोदर। और भी राधा दामोदर मंदिर में, जैसे कि हम देखते हैं राधा दामोदर बाएं तरफ श्रीमती राधा रानी, दाहिने ललिता सखी है ना बड़े, ये हाँ चहल चिकन वो भी है और बहुत सारे है ये है। और साथ साथ उसमें राधा दामोदर मंदिर में आप देखते हैं, जब भी हम जाते हैं दर्शन करने के लिए तो पुजारी क्या करते हैं, एक गोवर्धन शिला दिखाते हैं। उस शिला किसे, वहां क्या है उसका महात्म्य, तो ये जो गोवर्धन शिला है स्वयं भगवान सनातन गोस्वामी, जो कि जीव गोस्वामी के ताऊ जी थे भौतिक संबंध से, तो उनको उन्होंने भेंट की थी। कैसे, सनातन गोस्वामी का जब यहां से जाकर चक्कलेश्वर महादेव के पास उन्होंने भजन कुटीर बनाए, वहीं रहकर उन्होंने भजन भगवान का भजन करते थे और गिरिराज गोवर्धन को परिक्रमा करते थे, नियमित रूप से भगवान का परिक्रमा करते थे निरवचिन्न। किसी भी प्रकार आप हमारे मन में ये शंका हो सकती है, क्या उनको जर रोग आदि व्याधिग्रस्त नहीं होता था, नहीं, इतना संयमी वो थे और स्वयं भगवान का शिष्य है, अत्यंत प्रिय है महाप्रभु का, अत्यंत प्रिय पात्र सनातन गोस्वामी। एक बार सनातन गोस्वामी जी को पुरी में जगदानंद ने उपदेश दिया कि आप वृंदावन चले जाओ, जब ये बात महाप्रभु जी का कान में पड़ी तो महाप्रभु ने जगदानंद को इतना डांटे, बोले अरे आजकल का तू छोकरा है और तेरे पिता जैसे वो है, तू उनको आदेश देते हो, तू जानते हो वो कौन है, ऐसे ही। तो महाप्रभु का अत्यंत प्रिय है, तो सनातन गोस्वामी चकलेश्वर में रहते हुए उन्होंने नियमित रूप से गोवर्धन परिक्रमा करते थे, तो उन्होंने लगभग 90 आयु के पहुंचने पर, जैसे शरीर का स्थिति जैसे होती है, तो एक बार ऐसे ही परिक्रमा करते करते ऐसे ही गिर पड़े बेहोश प्राय हो गए। तो उस आप तो इतने परिक्रमा लगते हैं, उस समय बहुत लोग कम परिक्रमा करते थे, और सनातन गोस्वामी जिस समय खाली होता था, भीड़ भाड़ नहीं है, उस समय वो जाते थे अपना जप में, भगवान का जप करना और परिक्रमा करना, ये इनका ये है सतत। जप का अर्थ जो होता है तदर्थ भावनम, उसी भावना से ही उन्होंने जप किया करते थे। और जब इस प्रकार बेहोश होकर पड़ गए, कोई है नहीं उनको उठाने के लिए, स्वयं भगवान गोपाल रूप में आकर उनको उठाए, बोले बाबा आप ये हट छोड़ दो, आपका ये उम्र बहुत हो गए हैं, तो आप गिरिराज परिक्रमा ना करो। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि बेटा ऐसे ही है, मैं परिक्रमा ना करूं तो मन में अफसोस रह जाता है, अशांति रह जाती है, तो करूं तो इस प्रकार, और ऐसे ही चक्कर आया तो मैंने गिर पड़ा, तो उन्होंने उठाए, थोड़े देर तक उनको सहलाए और फिर खड़े करके तो उन्होंने जब परिक्रमा करने शुरू कर दिया सनातन गोस्वामी, वहां अंतर्ध्यान हो गए, गोपाल जी अंतर्ध्यान हो गए। पर सनातन गोस्वामी जब उनका अंतर्ध्यान हो जाने के पश्चात उनमें मन में और कोई जो जप करते थे वो जप में भी मन नहीं लगा, वही उनका बातचीत और उनका रूप सौंदर्य माधुर्य तो उनका मन में बैठ गया, उन्हीं को ही चिंतन करने लगे, बोले कि क्या हो गया मुझे, अरे मैं इतना जप करता हूं आज तक अभी तक कोई भी विषय मुझे आक्रांत व प्रलोभित नहीं किया, और ये छोटा सा ब्रजवासी लड़का ये आया मुझे थोड़ा सा मेरे साथ बातचीत किया और थोड़ा मेरी सेवा कर दी, तो उससे मेरा मन क्यों उसके प्रति आकर्षित है। ऐसे ही चिंतन करते करते तो उन्होंने सोच लिया कि नहीं, ये सामान्य कोई ब्रजवासी बालक नहीं है, मुझे लगता है कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही वो गोपाल के रूप में आए। तो ऐसे ही चिंतन कर करके उन्होंने दोनों तरफ, इधर भगवान का चिंतन प्रत्यक्ष रूप में हो रहा है और उधर छूट रहा है, तो ऐसे ही दशा में उन्होंने परिक्रमा करते, और कुछ दिन के बाद फिर दोबारा जो फिर परिक्रमा कर रहे थे फिर वही बात हुई, फिर चक्कर आया, फिर गिर पड़े, तो कोई पास में नहीं है, तो फिर गोपाल जी फिर आए तो उनको उठाए, बाबा आपको बताया था ना, ना बेटा क्या करूं क्या करूं, मैं मुझे रुका नहीं जाता है, गिरिराज का परिक्रमा बिना मुझे शांति नहीं आती है, तो इसलिए मैं करता हूं। ना देखो एक काम करो, इस उम्र में आप नहीं कर पाओगे, एक काम करो, मैं तुमको एक गोवर्धन शिला देता हूं, अभी प्रकट हो गए स्वयं भगवान उनका सामने और साक्षात दर्शन देकर बोले कि बाबा ये शिला ले लो, ये शिला को आप परिक्रमा करो, तो चार बार परिक्रमा करोगे तो गिरिराज का परिक्रमा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, आप चिंता न करो, विश्वास करो, और विश्वास दिलाने के लिए उस शिला पर, शिला को ऊपर उन्होंने बांसुरी अपना पग चेन और गौ के जो खुर ऐसे ही चिन्ह संबलित उस शिला को उनको भेंट किए, तो लेकर आए और बहुत खुश हुए, भगवान को दर्शन किया, भगवान का स्पर्शन किया, तो फिर बहुत खुश होकर लेकर आए और चकलेश्वर में जहाँ भजन कुटीर है वहाँ रखे और पूजा करने लगे और रोज परिक्रमा करने लगे, और जैसे ही परिक्रमा करने से उनको प्रसन्नता होती थी तो अब भी वही हुआ, तो उन्होंने समझ गए कि ये साक्षात भगवान ही है और गिरिराज को परिक्रमा किए, तो वही शिला अभी भी दामोदर मंदिर में विराजमान है, और वही राधा दामोदर मंदिर का परिसर का अंदर बहुत सारे आचार्यों का समाधि स्थल है, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, अविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो आप लोग जानते हैं सभी, तो वहाँ वो सब उनका समाधि मंदिर है, क्योंकि वो स्थान इतना पवित्र है, इतना दिव्य है, तो जब भी जाएंगे भक्त भगवान का वो जो तरंग है, मनो दशा का जो तरंग है वहाँ पूरा आंदोलित होता है, उसका अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको भी अगर निष्काम भाव से सच्चा मन से आप अगर परिक्रमा करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, ऐसे ही हमारी भी मनोदशा हो जाएगी। और उसमें जैसे कि राधा दामोदर है, राधा विनोद बिहारी वृंदावन चंद्र है, राधा छायल चिकन है, और राधा विनोद भी है और राधा माधव भी है, इतने, क्योंकि और सारे जो देवालय में इतना विग्रह नहीं है, यहाँ पे कितने विग्रह रखे हैं, सभी आचार्यों का, बड़े बड़े आचार्यों का सेवित विग्रह सब एकत्रित हुए हैं, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने वहीं अपना भजन कुटीर व भजन करने के लिए मनस्थ किए और वहीं से सारा विश्व के लिए अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट किए और वहीं से यूएसए जाने से पहले वहीं रहा करते थे। तो इसलिए राधा दामोदर भगवान का इस प्रकार प्राकट्य है, तो हम सभी उनका प्राकट्य दिवस में प्रभु का चरण में हम प्रार्थना करेंगे, जैसे प्रभुपाद जी को वो प्रेरणा दिए और उनको अपनाए, इसी प्रकार हम उनके प्रभुपाद जी के जो शिष्य प्रशिष्य है तो हम लोगों को भी वही आशीर्वाद प्राप्त हो भगवान का। और तो बहुत सारे हैं, आप लोग जानते हैं और समय नहीं है, और फिर आदेश है कि सबसे थोड़ा थोड़ा बोलना है। तो आज भी और एक आचार्य महानुभव रामानुजाचार्य जी के प्राकट्य दिवस, रामानुजाचार्य जो हमारे चार मुख्य संप्रदाय श्री रुद्र ब्रह्म सनक, ये जो है चार संप्रदाय में ये श्री संप्रदाय का आचार्य थे श्री रामानुजाचार्य, थे दक्षिण भारत के। तो जिन्होंने अद्वैतवाद का जो आचार्य शंकर के द्वारा प्रचारित था, तो उन वादों को उन्होंने खंडन किया, और जो आचार्य शंकर के द्वारा जो निराकारवाद है तो उनको खंडन करके, तो उन्होंने भक्तिवाद व भगवान का प्रेममय सेवा का प्रचार शुरू किया। तो वो आचार्य श्री रामानुजाचार्य, उनका जन्म कहाँ हुआ था, क्या नाम है, हाँ तो वो उनका जन्म श्री पेरम्बुरंदुर, हाँ तो ये दक्षिण भारत का नाम है, थोड़ा अटपटा सा लगता है, पेरम्बुरंदुर, हाँ पेरम्बुरंदुर, तो जो भी हो उस जगह पर उन्होंने 1017 एडी में उन्होंने जन्म हुआ था उनका। उनका पिताजी का नाम था आसुरी केशव एवं माता थे कांतिमती, उनका गर्भ से उनका प्राकट्य हुआ था। तो रामानुजाचार्य उन्होंने 16 साल की आयु में उन्होंने विवाह किया था, और उनका पत्नी का नाम था रक्षकमल। जब उन्होंने विवाह किया उसका थोड़े देर के बाद उनका पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी इस संसार से चले गए। तो रामानुजाचार्य और उनको अच्छा नहीं लगा, पिताजी का देहांत के उपरांत उनको अच्छा नहीं लगा, तो उस स्थान परित्याग करके उन्होंने कांचीपुरम वहां चले गए, कांचीपुरम जाकर उन्होंने रहे। तो वहां पर कांचीपुर में यमुनाचार्य का साथ उनका भेंट हुई, तो उनका रूप गुण और विद्वता और भक्ति सभी प्रकार ये सब देखकर उनका मन में उनसे दीक्षा अर्थात उनका आश्रय में रहकर भजन करने के लिए उनको इच्छा हुई, और उन्होंने यमुनाचार्य से उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे आप दीक्षा दीजिए, मैं आपका चरण में रहकर भजन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनसे दीक्षा ली, दीक्षा लेकर कांचीपुर में उन्होंने अध्ययन अद्वैत सिद्धांत वेदांत अध्ययन किए। किससे अध्ययन किए, तो उनका गुरुजी का नाम था यादव प्रकाश उनका गुरुजी का नाम था यादव प्रकाश, ये अद्वैत सिद्धांत का एक आचार्य थे। तो उनसे उन्होंने अद्वैत वेदांत अध्ययन किया। जब उन्होंने अध्ययन कर रहे थे तो उनका जो व्याख्यान प्रणाली है, तो एक तो द्वैत को खंडन करते थे और जो व्याख्यान है थोड़ा अटपटा सा था। एक दिन का बात, जब उन्होंने भगवान पुंडरीकाक्ष भगवान श्री विष्णु का नयन चक्षु का बारे में वर्णन कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही एक शब्द उच्चारण किए कि कप्यास, ऐसे शब्द। तो शब्द तो ठीक है, लेकिन अर्थ जो उन्होंने किया है तो उन्होंने किंबुत किंबाकार किया, जो कि इनको बहुत बुरा लगा। बोले कि भगवान का कप्यास का अर्थ होता है, कपि मतलब होता है बंदर, ये जो अब लाल बंदर होते हैं ना, तो आस मतलब जो बैठने का जगह है, तो वो जैसे रंग का है तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का वो चक्षु है ऐसे। लेकिन ये उनको रामानुजाचार्य को सहन नहीं हुआ इस प्रकार, तो उन्होंने तुरंत उस अर्थ को खंडन किए, गुरुजी आप जो इनका व्याख्या कर रहे हैं ये वास्तव अर्थ नहीं है, ये तो भगवान के लिए ये शब्द प्रयोग इस प्रकार व्याख्या ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो उन्होंने बोले क्या है, तो उन्होंने बता दिया कमल, कप्यास का अर्थ कमल है, तो कम जलम, तो जल, जल में कमल उत्पन्न होता है, तो कमल का जो पंखुड़े है पेटल से, तो उनका जैसे कलर होता है भगवान का आंख का वही रंग होता है। तो उन्होंने सुंदर व्याख्यान कर दिए और तो संतुष्ट तो हो गए, लेकिन शिष्यों का बीच में बैठे हुए यादव प्रकाश को बहुत माने लज्जा अनुभव हुई। उन्होंने अंदर से उनके प्रति रामानुज के प्रति बहुत क्रोधित तो हुए, और बाहर तो प्रकट नहीं कर सकते क्योंकि शिष्य गुरु का व्याख्यान को खंडन करे और स्वमत को स्थापन करे और सभी के द्वारा प्रशंसित हो, तो ये तो गुरु जी का बर्दाश्त के बाहर था। तो इसलिए उन्होंने उनको बोल दिए कि देखो आप यहां से चले जाओ, अन्यत्र कहीं अध्ययन करो और यहां नहीं रहो। और ऐसे ही कि सुना जाता है कि उन्होंने यादव प्रकाश ने अपना शिष्यों के साथ ऐसे ही माने व्यूह चक्रांत किए कि उनको मारने के लिए, लेकिन वो स्थान परित्याग करके उन्होंने वो चल दिए। तो जाकर फिर उन्होंने जो भक्तिमय सेवा है तो उसका अपना टोल खोले है, स्कूल खोले है, और स्कूल में अपना अध्ययन शिक्षा आरंभ कर दिए। तो जो भी छात्र आते थे, जो भी और कोई पढ़ने वाले आते हैं, तो उनका शिक्षा में बहुत प्रभावित होकर बहुत प्रशंसा करते थे। तो उससे यादव प्रकाश को बहुत उनका मन में दुख होता था कि ये मुझसे बहुत आगे बढ़ गए, लोग मुझसे सुनने बजे तो उनके पास जाकर वो सब पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, लेकिन था ही आचार्य थे, भगवान का अनन्य भक्त थे, और इसी प्रकार भक्ति और सेवा का परिपाटी इतना सुंदर ढंग से उन्होंने व्याख्यान करते थे, सभी को भाता, सभी को रुचिकर होता था, इसलिए सभी रोजाना बढ़ते थे आना उनके कक्षा में, और इस प्रकार उनका प्रशंसा चारों ओर फैलने लगा। तो यादव प्रकाश इस प्रकार बहुत सारे टाइम हो गया ये, और तो आप रामानुजाचार्य का बारे में तो आप सब जानते हैं, और बहुत उनका लंबे कहानी है, इतना है उनका जीवन चरित्र, और इतना शिक्षा प्रद है रामानुजाचार्य, उन्होंने किस प्रकार जगत को शिक्षा दी है, गुरु का प्रदत्त मंत्र को उन्होंने किस प्रकार ये करिए, और गुरु भी स्वीकार किए, परीक्षा कर रहे थे तो तो रामानुजाचार्य यह श्री संप्रदाय का आचार्य है। तो समय हो गया, यहीं से विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा दामोदर देव भगवान की, श्रीपाद रामानुजाचार्य की, श्रील प्रभुपाद की, और प्रेमानंदी।